तो जरा सा बात करते हैं सालेहात की। बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की ये टर्मिनोलॉजीज हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं इसलिए गौर नहीं करते, लेकिन चूंकि इस वक्त हम थोड़ा इल्मी तौर पे बात कर रहे हैं तो लिखिएगा कि खसारे से बचने के लिए, बैंकरप्सी से बचने के लिए, वलस्रिन अल इंसान अलफी खुसर, बचने के लिए ईमान के बाद दूसरी सिफत क्या है, वामिलुस सालेहात। सालेहात किसको कहते हैं? आप देखिए, सालेहतुन की जमा, तमाम नेकियों को जमा करने वाला। सालेहात का लफ्ज तमाम नेकियों को जमा करता है, जिससे नेकी और भलाई की कोई किस्म छूटती नहीं है। और कुरान की रोशनी में कोई अमल भी उस वक्त तक अमल सालेह नहीं हो सकता जब तक उसकी जड़ में ईमान मौजूद ना हो। कल आप लोगों में से किसी ने सवाल किया था ना, कुछ शायद इधर ही सवाल हुआ था कि कोई गैर मुस्लिम है फिर भी अच्छा काम करे। यानी जहां मैंने आपको जुमला बोला था कि राइटियस डीड्स एंड गुड डीड्स का फर्क रखिए, गैर मुस्लिम की नेकी गुड डीड हो सकती है, राइटियस नहीं हो सकती। राइटियस डीड होने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे ईमान लाजमी है। आपकी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, रोजे रखने लगते हैं आपके साथ। अब आप कहते हैं देखे जितने घंटे मैं भूखी रही वो भी रही, जितने घंटे मैं प्यासी रही वो भी रही, तो मुझे तो अजर मिल रहा, उसको क्यों नहीं मिल रहा? तो जवाब उसका इसमें छुपा है कि उसकी जड़ में ईमान नहीं है। बच्चे को स्कूल में दाखिल ना कराएं, लेकिन वो सारी किताबें ले दें, पढ़ा भी दें, तो क्या स्कूल वाले उसको इम्तिहान दिलवाने देंगे आपके बिहाफ पे? तो ईमान किसी भी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाने का नाम है, और अमल सवाले उस फिर काम के तकाजे पूरे करने का। और याद रखिए, हर चीज की सवाले अल्लाह ने आपको जो किरदार दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको बेहतरीन तरीके से कीजिए। बस आप शौहर हैं, अच्छे शौहर बनिए, ये है अमल सवाले। आप एक बीवी हैं, अच्छी बीवी बनिए। आप एक बाप हैं, आप एक जिम्मेदार बाप बनिए। आप एक हुक्मरान हैं, जिम्मेदार हुक्मरान बनिए। आप किसी के घर में किराए पे रहते हैं, आप उसके घर को सही रखिए। आप मालिक मकान है, आपके अंडर 10-15 लोग काम करते हैं, इम्प्लॉयज हैं, उनको वक्त पे दीजिए। यानी ये मैंने आपको सबसे सिंपल मिसाल दी अमल सवाले की। और याद रखिए, ये सालेहीन वो दर्जा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था जब सब कुछ मिल गया, वादखिलना बिरहमतिका फी इबादिका सालेहीन। और आप सूरह निसा की वो आयत जो हम सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम की ज़िमन में पढ़ते हैं कि जिनके अंदर सालेहीन के दर्जे को बिल्कुल इब्तदाई दर्जे पर रख कर फिर सिद्दीकीन, शुहदा और इसी तरह अंबिया के दर्जे पर पेश किया गया। तो अमलुस सालेहात में हर काम जो अल्लाह ने आपको दिया, हर वो जिम्मेदारी जो आपने कबूल की, उसको ठीक तरह कीजिए, उसका ड्यू राइट दीजिए। कच्चे पक्के अधूरे बधूरे अंदर कुछ बाहर कुछ, आप कोर्स कर रहे हैं, आपका अमल सवाले क्या कि इस कोर्स को आसान दर्जे पे कीजिए। आपने साइन किया है कि हम कोर्स की सारी लाइबिलिटीज पूरी करेंगे। आप वॉलंटियर करते हैं, आप उसकी काम कीजिए। यानी आप जहाज में जाते हैं, आप टिकट लेकर उनसे ये इकरार करते हैं कि हम तुम्हारे जहाज को खराब नहीं करेंगे। आप उनकी सीटों पर लिखना शुरू कर दें, आप उनके टिश्यू पेपर्स को पकड़ कर तो वेस्ट करें। अमल सवाले पूरी जिंदगी पे छाया हुआ है। और याद रखिए कि जो अल्लाह और रसूल कह दे उसके मुताबिक अमल करने का नाम अमल सालेह है। और मजे की बात देखिए कि कुरान में हर जगह, सिर्फ एक मुकाम के अलावा, मैं अगर आपको कौन ढूंढे तो ढूंढ लीजिए, पूरे कुरान में आम अनु के बाद अमलुस सालेहात है। सिर्फ एक जगह सबर का जिक्र है। यानी अमल सालेह ऐसे ही है कि जैसे एक आंख आम अनु है तो दूसरी अमल सालेह है, इसलिए इस सूरत में भी आम अनु के बाद वामिलुस सालेहात है। बगैर ईमान लाए किसी अमल साले के अजर की उम्मीद रखना अबस है, वर्थलेस है, बेकार है। ईमान वही मोतबर है, उसी का इतबार किया जाएगा, उसी से फायदा होगा जिसको आपका अमल सच्चा कर दे, आप उसको पेश कर सके। वरना दावे, आप दावे जितने मर्जी करते जाएं, लेकिन आपका तर्ज जिंदगी, आपका लाइफ स्टाइल अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से हटकर है, तो आप कुछ भी वहां से ग्रो नहीं कर सकेंगे। क्यामत के दिन बहुत सारे लोगों के ईमान के दरख्त टुंडमुंड होंगे। आज भी ऐसे ही है, 2 बिलियन के करीब हम आमनों के दावेदार हैं आज दुनिया में एटलीस्ट, लेकिन अमल के बीज भी नहीं है। तो याद रखिए, ईमान और अमल साले का ताल्लुक बीज और दरख्त का है। जब तक बीज जमीन में ना डाला जाए कोई दरख्त पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर बीज जमीन में हो और कोई दरख्त पैदा ही ना हो रहा हो तो क्या मतलब होगा? बीज डाला, दरख्त नहीं उग रहा, तो आप कह सकते हैं कि या तो बीज खोटा था, डॉर्मेंट हो गया, जमीन में दफन हो गया, या जमीन ठीक नहीं थी, या सही मौसम में बीज नहीं डाला। ऐसे ही है ना, आपके मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से अगर अमल साले के पौधे नहीं उग रहे तो अंदर कोई खोट है, या दिल की मट्टी खराब है, या कीना है, हसद है, बुखस है लोगों से, या हमारी गीबतें हैं जो हमारी नेकियों को खा रही, कोई ना कोई बात है जरूर। औरत प्रेग्नेंट हो और बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, शोर मचाया हुआ, बच्चा है पेट में है, इतने महीने गुजर गए कोई असरात ही नहीं है, झूठ है आपका, या तो फिर अबॉर्ड हो गया या कुछ और हो गया, कुछ ना कुछ है। तो याद रखिए पूरे कुरान में जितनी बशारतें भी दी गई हैं वो आमनू वालों को नहीं दी गई, वरना अब्दुल्ला बिन अबी भी बच जाता। अब्दुल्ला बिन अबी आमनू था, आमिलो सालेहात नहीं था, दिल में शक था, तरद्दुद था। इसी तरह फिर तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती, सारे मुनाफिकीन जो थे वो आमनू थे लेकिन वह आमिलो सालेहात। तो खसारे से बचाने के लिए ईमान के बाद अमल सालेह, इसके बगैर आप नहीं बच सकते। यहां तक अगर आपको मैं सिर्फ खुलासा करवा दूं कि जब आप ईमान के बाद अमल सालेह की बात करते हैं तो कह लीजिए कि आपने 50% क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। कोई भी काम करने के प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसकी कुछ पेशबंदियां होती हैं, अल्लाह ने चार दी थी, इसमें से दो आपने पूरी कर ली। आपको वीजा लगवाना है, मिसाल है उमरे का, तो जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको कहता है भाई अपनी दो तस्वीरें ले आओ, अपना शनाख्ती कार्ड ले आओ, आप पासपोर्ट ले आओ और फलां चीज ले आओ, इतने फीस दे दो। ये चार चीजें ले जाएंगे तो फिर हो सकता है वो आपको वीजा लगवा दे, लेकिन आप तस्वीरें ना दें, आईडी कार्ड ना दें या कोई और ना दें तो क्या वीजा लगवाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम देखें ईमान और अमल सालेह का आपस का ताल्लुक क्या है। अब ये एक नेक्स्ट टाइम पॉइंट हम ले रहे हैं कि ईमान और अमल सालेह का आपस में ताल्लुक क्या है। अगर कानूनी तौर पे लीगल एस्पेक्ट देखें ना तो ये दोनों दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, जैसे अदालत में जाकर आप एक चीज पेश करते हैं एक है, लेकिन हकीकत में देखें तो ये दोनों एक है, ब्लेंडिंग है। जैसे आप बर्फ और पानी को घोलते हैं, कुछ अरसे के बाद फिर बर्फ पानी में घुल जाती है, चीनी नमक पानी में घुल जाता है। ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर ईमान हो और मिठास ना आए, आप चीनी डालें, नमक डालें, लेमन डालें, फिर स्कंजवी ना बने, फीका ही रहे, आप एक और लेमन डालें फिर भी फीका, एक चीनी की चम्मच और डालें फिर भी फीका रहे, ये हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ये है उन लोगों की मिसाल जो आज कहते हैं नहीं अंदर से बड़े नेक हैं वैसे अमल नहीं है, फुलां वैसे बड़े अच्छे लेकिन गालियां देते हैं, मोमिन गाली नहीं दे सकता, मोमिन जिना नहीं कर सकता, ईमान वाले का दिल लगता ही नहीं है गुनाहों में। जैसे कोई नफीस तबा डिसेंट पर्सन किसी बदबू वाले माहौल में नहीं बैठ सकता, स्मोकिंग हो रही है वहां कोई बड़ा सलीमुल फितरत बंदा नहीं बैठ सकता, कहीं से ड्रग्स की स्मेल आ रही है, कोई शराब की भभुके उठ रहे हैं, एक अच्छी तबीयत वाला बंदा नहीं बैठता। मोमिन बहुत नफीस होता है, वो गुनाहों के माहौल में, वो शराब और कबाब के माहौल में, वो गाने बजाने के माहौल में, वो नाच गाना है, वो मेहंदी है, वो उपटन है, वो आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, वो कोई थीम पार्टी है, ईमान वाला रहता ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं लगता, वो कहता है ये मुझे सूट नहीं करता। आप देखिए ना मिलियनेरियन शख्स हो करोड़पति तो उसकी बीवी इतवार बाजार से शॉपिंग करेगी, और अगर कोई देख ले उसको करते हुए कहेगी सेठ साहब की बेगम इतवार बाजार में जाकर पैसों पे झगड़ रही थी, तो मियां भी उसको कहेगा खबरदार आइंदा तुम उधर गई, सबको पता है तुम मेरी बीवी हो। सब स्टैंडर्ड लगता है ना हमें, जब स्टैंडर्ड बढ़ता है ना तो महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है। बिल्कुल इसी तरह जितना ईमान बढ़ता है आपकी नेकियां स्टैंडर्ड वाली होती हैं। आम बंदे की दौलत का पता चलती है जब पैसा आए तो घर की हालत बदल जाती है, कुर्सियों की जगह सोफे आ जाते हैं, पलंगों की जगह बेड आ जाते हैं, कपड़े अच्छे आते हैं, लोग कहते हैं भी लगता है इनके मियां की प्रमोशन हो रही है। जिस तरह हमारी दौलत उसके इजहार से, पहनने से, खाने से, ओढ़ने से दिखती है ना, ईमान वाले का ईमान और उसका तकवा उसकी नेकियों की सिलेक्शन से दिखता है। ये नेकी ये तो सब करते हैं, जैसे हम कहते हैं ये तो कॉमन कपड़े हैं, ये तो सारे पहनते हैं, मुझे तो कोई ब्रांड का पहनना है, मुझे तो कोई थीम ड्रेस पहनना है, मुझे तो कोई लाखों का पहनना है जो दो चार ही खरीद ले, मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी जो 2-4 हजार रुपए का जोड़ा मिल जाए। मोमिन थोड़ी नेकियों पर राजी नहीं होता। अल्लाह के नबी के दौर में अमीर और गरीब दोनों के बीच में नेकियों की इस तरह से कह लीजिए कि दौड़ लगी हुई थी, जैसे आज पैसे की दौड़ है, जैसे आज शादी एक से बढ़ के दूसरी करनी। गरीब साहब अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी आपके फलां फलां साहब ही तो इतने अमीर हैं, तो वो तो सदका भी करते, खर्चे भी करते, और पैसे से बंदा बहुत नेकियां कर सकता है। मैं कहती हूँ अगर ये बात पैसे वाले को पता लग जाए ना, ये बात पैसे कमाने वाले को पता चल जाए कि मेरी सुबह से शाम की मेहनत, और मेरी कहना चाहिए कि सुबह से शाम तक जो मैं ख्वार होता हूँ, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे को आराम से नहीं कमाते, सबसे कम वो घर में वो रहते हैं जिनके नाम पे घर होता है, सबसे कम कपड़े वो पहनते हैं जिन्होंने कपड़े दूसरों को लेके देने होते हैं। अगर उनको ये पता लग जाए कि हमारे पैसे की सबसे बेहतरीन कदर कौन करेगा, तो यकीन करें कि अलअफ के दर्जे पे बच्चे, घर, दारी, जिम्मेदारियां और बाकी माल को वो अल्लाह के रास्तों में लगा दें। बच्चों पे भी लगाना अल्लाह के रास्तों पे है, बीवी को भी देना अल्लाह के रास्ते पे है, लेकिन इंसान कभी ऐसी जगह पे अपना पैसा नहीं फेंकता जहां से उसको नफे की उम्मीद ना हो। तो जितना आप किसी भी नेकी को करते हैं, आपको महसूस हो जाता है कि ये नेकी करना कराना उसके लिए। तो बात का खुलासा क्या है कि जितना ईमान उतने अमल साले, तकवा बढ़ता जाएगा, आपका नेकियों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। काला के नबी वो देखिए कितनी नेकियां कर रहे हैं, सदके भी देते हैं, अब हमारे पास पैसे ही नहीं। कहा अच्छा तुम ऐसा करो, ये तुम जरा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कुछ वज़ाइफ बता दिए, तुम ये कर लो तो अल्लाह तुम्हें उनके ही बराबर कर देगा। चले गए, ठीक है। और कुछ दिन के बाद वो अमीरों को भी पता चल गया वजीफे, उन्होंने भी शुरू कर दिए, और ये फिर वापस आ गए अल्लाह के नबी, आप तो वो भी ये करने लगे। कज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अब ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको दे दे। तो ये दौड़ होती है जब ईमान होता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यज़नि ज़ानी हीना यज़नी, ज़ानी जब जिना कर रहा होता है उस वक्त वो वाहुवा मोमिन, वो मोमिन नहीं रहता। वला यसरिकु सारिकु हीना यसरिकु, चोर चोरी करते वक्त वाहुवा मोमिन, मोमिन नहीं रहता। वला यशरबुल खमरा हीना यशरबुहा, वाहुवा मोमिन, यानी ईमान रुखसत हो जाता है उस वक्त इंसान के अंदर से जब कोई गुनाह करता है, क्योंकि ईमान को शर्म आ रही होती है कि मेरी मौजूदगी में कोई जिना करे, मेरी मौजूदगी में कोई बेहूदगी देखे, गंदी चीज सुने, चोरी करे, गीबत करूं, मैं भाग रहा हूं भाई, मैं इधर नहीं बैठता, तुम जब फारिग हो जाओ कि तुम मुझे बुला लेना, ऐसे अंदर से ईमान निकल के भाग जाता है। तो जब दिल से यकीन निकलता है ना अल्लाह के वजूद का और उसके देखने और सुनने का, फिर ही बंदा गुनाह करता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। आप सड़क पे जाते हुए रोड पे खड़े एक ट्रैफिक कांस्टेबल को देखकर गाड़ी ठीक नहीं कर लेते, रेड लाइट पे रुक जाते, सीट बेल्ट बांधने लग जाते, आप स्पीड को चेक करने लग जाते, तो सिर्फ एक कांस्टेबल 6-7 फुट का या 5-6 फुट का बंदा आपकी गाड़ी को सही करवा रहा है, तो क्या अल्लाह ताला के अलीम और अलबसीर और असमी होने का एहसास हमें सीधा नहीं करेगा? तो ये दोनों लाजिम और मलजूम है। या मैं साथ ही गलत फहमी का इजाला भी करूंगी, हमारे यहाँ अमूमन ईमान कहते हैं जाती नेकियों को, अमल सवाले नेकियां, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। हाजी साहब जी, आप शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं कि अपने बेटे के लिए, भाई के लिए, कहते हैं जी सोमो सलात की पाबंद लड़की। इसी तरह लड़का ढूंढे तो कहते हैं जी नमाजी बच्चा होना चाहिए। जरा सा इसको समझिए कि आपके अंदर ईमान है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। आप भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे अंदर ईमान है कि नहीं। इसका कैसे पता चलेगा कि मैं नेक हूं? के बाद आगे जाके आपके हदीस कोट करा दूंगी, किसी मौके पे अल्लाह के नबी से सवाल किया था किसी शख्स ने, मुझे कैसे पता चले कि मैं नेक हूं कि नहीं? कहा अगर तेरा हमसाया तेरी नेकी की गवाही देता है तो तू नेक है। ये नहीं कहा कि तेरी नमाजें 5 की बजाय अगर 7 हैं तो फिर। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने नेकियां जाती इबादत को बना लिया, अपने ही अकाउंट में पैसे डालने वाली बात है कि आप नमाजें बढ़ा रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इंसानी मामलात में आप खोटे हैं। किसी की आपसे सलाम दुआ हो जाए, कानों को हाथ लगाते हैं, अल्लाह कभी इसके बस दोबारा ना डालना। असल आपका ईमान ये है कि दूसरे आपके साथ कंफर्टेबल फील करें। देखिए अरबी ग्रामर का एक असूल है, शायद आप में से किसी को ग्रामर इतनी को आती है। एक होता है लफ्ज़ लाजिम और एक होता है मुतअद्दी, पता है फर्क दोनों का? लाजिम बस आप तक है, मुतअद्दी वो जिसका दूसरों पर असर हो। ये जो हमारी अपनी नेकियां ना, नमाज, रोजा, हज, तहज्जुद, उमरा, ये लाजिम है, बस मेरे तक है। भाई मैं नमाजें पढ़ रही हूँ तो आपको क्या लगे? अगर मेरा आज रोजा है तो आपको क्या लगे? इसके बरक्स दूसरों के साथ जो नेकियां अमल सवाले की सूरत में होती है ना, इसको मुतद्दी कहते हैं, दूसरे पे आपका असर। हमसाया का इससे अच्छा हमसाया कोई नहीं। हजरत उमर के सामने किसी ने तारीफ करना चाहिए एक शख्स की, तो उन्होंने कहा क्या तूने उसके साथ कभी सफर किया? कहा नहीं। कहा कभी लेन देन हुआ? कहा नहीं। कहा तेरा हमसाया है वो? कहा नहीं। कहा फिर तुझे कोई हक नहीं उसकी तारीफ करने का, क्योंकि जब तक राह ना पिया ते वाह ना पिया, राह पिया जाने ते वाह पिया जाने, लोग कानों को हाथ लगाएं कि अल्लाह कभी इस जैसा ना कोई हमें टकराना बाद में, तो ये मान नहीं है। अमल सवाले है ही वो जिसके अंदर लोग आपकी सच्चाई की गवाही दे, ये मुतद्दी हो। कभी आप सड़क पे खड़े धूप में हैं, आप कोई बुजुर्ग है, जैसे मिसाल है आप कोई मर्द है नमाज के लिए गया, धूप पड़ी हुई है, इतने में पास एक गाड़ी खड़ी होती है, आ जाए आपको मस्जिद जाना है, मैं आपको वहां छोड़ आता हूँ। कभी आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आप अपने बच्चे को लेकर रोड पे आ जाती है, इतने में एक गाड़ी खड़ी होती है, वो कहते हैं भाई जी बैठे हैं, आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं। खरा कर आप क्या कहते हैं? اللہ کا کوئی ولی آیا اور مجھے ہاسپٹل لے گیا. ہو سکتا ہے وہ بندہ نمازی بھی نہ ہو, لیکن آپ اس کو ولی کہہ رہی ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی. آج یہ اتنا مشکل پیپر ہے ہمارا کہ اللہ کی پناہ, ہم نیکیوں کے سحر میں, نیکیوں کے ایک ہال کے اندر بند ہو کر اور نیک سے نیک ہو کر لوگوں کو ہم اتنا ہی لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہم جتنے نیک ہوتے جاتے ہیں دوسرے لوگ اتنے ہی گناہ گار ہوتے جاتے ہیں. ہماری نیکی دوسروں کا گناہ بن جاتی ہے, لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے, ہائے کتنے نیک, ہم نہیں. یہ جیسے جیسے کوئی دسویں منزل پہ چڑھ گیا سیڑھیوں میں, تو دوسرا بیچارہ جس سے دس سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی وہ نیچے آہیں بھرے گا, ہائے یہ کتنے نیک ہیں, ہائے دیکھو یہ اتنی اوپر چلے گئے, ابھی چلے گئے, یہ چلے گئے, وہ ہو گئے. تو آپ میں صرف نفل پڑھ کر نہیں نیک ہو سکتے, ہمارا ہر ایکشن بندگی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بڑا اللہ کا بندہ ہے, وہ بڑا نیک ہے. آپ کی میری نیکی ابدیت میں نمازوں سے شروع ہوتی ہے, لیکن عمل صالحات جس میں انسانی معاملات بھی ہیں, اور ہر نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ ثابت کرو کہ ابھی بھی تم مسلمان ہو. کٹھی پانچ بھی تو پڑھائی جا سکتی تھی نا. نہیں, اللہ فجر سے لے کے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب کے بٹوین آپ کو بار بار چیک کر رہا ہوتا ہے, آر یو اسٹل مومن, آر یو اسٹل ایمان والے, اچھا ابھی واقعی ہو, ریوائیول ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کا پاسپورٹ ہے, 10 سال کے لیے ایشو کیا گورنمنٹ نے, اس کے بعد رینیول ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ 2 سال, 3 سال, 5 سال کے لیے ایشو ہوتا ہے, پھر رینیول ہے نا. جس طرح ہمارے کارڈز, ہمارے ڈاکیومینٹس رینیو ہوتے ہیں نا کچھ سالوں میں, ایگزیکٹلی ہمارا ایمان آمنو جو ہے یہ ہر ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کے ساتھ رینیو ہوتا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ آپ پڑھیں سورۃ صافات میں, فلما اسلما, اللہ کہتے ہیں جب وہ باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوئے. کیسے؟ باپ نے گردن پہ چھری رکھی تو بیٹے نے گردن جھکا دی, اللہ کے اس حکم پہ یہ مسلمان ہوئے. بالکل اسی طرح ہم جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے نا, تو اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کے سرٹیفکیٹ کو رینیو کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایکسپائر نہیں ہونے دوں گی اپنا ایمان. اور یہ کون سا ایمان ہے جو آج ہم لیے پھر رہے ہیں, جو ہم اپنے ایمان کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک حکم سے اگلے حکم تک رینیوبل ہے. کارڈ تو ہوتے ہیں نا سال کے لیے, 5 سال 10 سال, اللہ کے ہاں میرا آپ کا ایمان ہر حکم کے بعد رینیو ہے. لبیک اللہم لبیک, سمینا وطانا, بلا تمو تو نہیں لوان تو مسلم, مرتے دم تک جب اللہ کا کوئی حکم آ گیا لبیک اللہم لبیک, پھر اس میں آپ کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی, میں کیا کروں, ویسے کیا کروں, یہ کیسے ہوگا, ویسے ہوگا. تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کا کیا تعلق ہے, تو آپ نے کہا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. صحابہ ڈر گئے, لرز گئے, پتہ نہیں آگے کس کا نام آنا ہے. کہا اللہ کے نبی لم اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ بچا ہوا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے ایمان اور اخلاق. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کی عمر میں آئے, اور گواہی کیا دے کر کے کہ ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا, اور یہ کیوں کہا کہ یہ کیا. آپ اپنی ایک ماسی اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا جا کر وہاں دیکھیے, دن میں 10 دفعہ ہم اس کو ڈانٹتے ہیں, سارا کام بھی کرتی ہیں پھر بھی ہماری ڈانٹے کھاتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ایمان اور عمل صالح گہرا تعلق ہے. لا ایمان لم لا امانت لہو, اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں ہے. ولا دین لم لا عہد لہو, اس کا دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں. ہم جھوٹ بولتے, وعدہ خلافی کرتے, لکھتے کچھ, کرتے کچھ, کہتے کچھ, بتاتے کچھ, تو جو وعدے پورے نہیں کرتا, جو وقت کی پابندی نہیں کرتا, جو کہی بات کو نبھاتا نہیں ہے, مان لیجئے کہ اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں جہاں پوری ہوئیں, اب یہاں لکھئے آپ اپنے ذاتی طور پر, جیسے آپ کی پرسنل امیگریشن ہو گئی. کبھی کبھی ایک بندہ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, اب مرد کلیئر ہو گیا, کہتے ہیں بھائی آپ جائیے, آپ کو سٹیمپ لگا دیتے ہیں. اب بیگم ہے, اب بیگم کے جب پیپر دیکھے اس میں کوئی گڑبڑ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ ان کے پاس نہیں, میں پچھلی دفعہ جب ادھر ہی آ رہی تھی تو مجھے کسی نے روکا اور کہا کہ آپ ان کو ساتھ لے جائیں گی لندن. خیریت کیا ہوا, کپل تھا کوئی, انکل آنٹی تھے کوئی, کہنے لگے کہ آنٹی کو اجازت مل گئی ہے, تو انکل کے پاس کوئی ویکسینیشن کارڈ نہیں تھا, ان کو نہیں اجازت دے رہے. اب وہ آنٹی کہہ رہی ہے نہیں آپ نہیں جائیں گے تو میں نے بھی نہیں جانا, کیونکہ ان کو اکیلے سفر کرنے کی عادت نہیں تھی, اور انکل جا رہے تھے کہ چلو میری تو ٹکٹ ضائع ہوئی, میرا تو نہیں تو تمہارا بچے انتظار کریں, تم چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اگر آپ ان کی ٹیک کیئر کر لیں تو یہ چلی جائیں گی. ایک جا رہا ہے دوسرا نہیں جا رہا تو روک لیا, बिल्कुल इसी तरह से अल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात लिखिए, ये हमारी इनफिरादी इंडिविजुअल निकियां हैं, खसारे से बचने के लिए, बैंकरप्सी से बचने के लिए एटलीस्ट मुझे आमनु और अमिलु सालिहात लाना है। यहां तक आसान है, दैट इज लाजिम। इन सब का इफेक्ट और इन सब का मामला मेरे अपने जाती अमल के साथ है, मैं अपने आप को लेंगी, यह है 50%। लेकिन क्या 50% ईमान से जन्नत मिलेगी? आज 50% ईमान को समझिए कि आधा नोट, आधे नोट से तो एक रोटी नहीं मिलती। फटा हुआ नोट आप आज भी यहां 10 पाउंड का नोट ले जाएं और फाड़ के आधा करके आप एसडाले से कहें कि इसको 5 पाउंड समझ लो, लेगा? वो कहेगा नहीं, या तो पूरा लेकर आओ या नहीं तो ये भी छोड़ दो। हम आधे नोट से जन्नत लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगी। और अगर आप आयत को देखें ना, तो पूरी आयत के अंदर वतवासो बिल हक़ी वतवासो बिस सब्र से पहले ये चारों चीजें हैं, एक ही आयत है, इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलु सालिहात। अगर यहां आयत खत्म हो जाती, ये भी लिखिए जुमला, चार आयतें हो जाती, वलसर एक आयत, इन्नल इंसान लफी खुसर दूसरी आयत, इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलु सालिहात तीसरी आयत, वतवासो बिल हक़ी वतवासो बिस सब्र चार हो जाती। मुमकिन था इतना बड़ा मानी में फर्क पड़ जाना था कि जो हम डाले बैठे हैं। लोगों ने कहना था चलो जी एक आयत पे तो अमल कर ही रहे हैं ना, कितनी अनयूजुअल बात है। वलसर एक लफ्ज, वाव के साथ हर्फ और अलसर एक लफ्ज, इन्नल इंसाना लफी खुसर चार लफ्ज, और तीसरी तिल्लल्लज़ीना आमनु वामिलु सालिहाती वतवासो बिल हक़्क़ी वतवासो बिसबर, शायद 10 लफ्ज हैं। तरतीब तो ठीक नहीं लग रही, इसलिए कि ये चारों एक जद में रहेंगी, एक ऑर्डर है, चार सीढ़ियां हैं जिसमें से एक छोड़ नहीं सकते। तो खसारे से बचने के लिए ईमान लाने के बाद, अमल साले के बाद, अब दो लाजमी चीजें, उनमें से एक तवासी बिल हक और तवासी बिल सबर। पहली बात, इन चारों का फर्क समझ गए ना आप लोग कि इसमें चॉइस नहीं है, पिक एंड चूज नहीं हो सकते, तवासो बिल हक और तवासो बिल सबर। और आप देख रहे हैं कि दो दफा तवासो का लफ्ज है, यहां भी एक और, ये सारी तरकीब होती है, इसको बिलागा कहते हैं। सिर्फ मैं आपको टेस्ट करवा सकती हूँ, ये आयत ऐसे हो सकती थी, आप देखिए तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, क्या ये आयत ऐसे नहीं हो सकती थी? व तवासो बिल हक की व बिस सब्र आ सकता था ना, एक ही लफ्ज है ना तवासी। तो आयत देखिए, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाती व तवासो बिल हक की व सब्र आ सकता था, लेकिन लफ्ज तवासो दो दफा आया है, एक दफा बिल हक, हक के साथ, और एक तवासो बिस सबर, दो बार आया है। क्यों? नंबर एक, दोनों की अपनी जगह अहमियत है। कुरान का ये अंदाज हम इतनी छोटी से वक्त में समझ नहीं सकते, लेकिन यहाँ तवासो बिल हक कह के थर्ड स्टेज बताई गई। जैसे बच्चे के माँ के पेट के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं ना, किसी एक स्टेप को आप ओवरलुक नहीं कर सकते, एक सीढ़ी नहीं छोड़ सकते तो एक मरहला भी नहीं छोड़ सकते। इसी तरह यहाँ तवासो बिल हक है। लफ्ज तवासो को देखिए, लफ्ज वसीयत उर्दू में वही लफ्ज है, ये वो स्वात या वसीयत अरबी जुबान में हर उस बात को कहते हैं जो ताकीद के साथ कही जाए, यानी इसमें एक तो ताकीद आती है और एक इसरार आता है। ताकीद समझते हैं ना, ताकीद मौकद होना, पीछे भी बात हुई थी, एम्फेसाइज करना, जरूर करना, आप जरूर दूध लेकर आए। और ताकीद क्या है, बार बार के दूध लेके आइएगा, दूध ना भूलिए, दूध ना भूलिएगा, ये है वो है। उर्दू जुबान में किसी शख्स के इंतकाल के वक्त जो बात कही जाती है ना, उसको वसीयत कहा जाता है, अमूमन हमारे कल्चर में ऐसे ही है। लेकिन अरबी जुबान में ऐसी बात जो ताकीदन कही जाए वो इसमें। अच्छा, यहाँ तवासौ, फिर ग्रामर जिनको थोड़ी बहुत आती है वो समझे, तवासौ बाब तफाउल है, तवासी बाब तफाउल से मस्तर है। और जिन्होंने अब बाब पढ़े हैं वो जानते हैं कि इस बाब की खूबी होती है, बाब तफाउल में मुबालगा होता है, एग्जेजुरेशन होती है, और किसी काम को एहतमाम के साथ करना होता है, जैसे आप कहते हैं परफेक्शन के साथ करना। दूसरी इस बाब की खूबी क्या है, बोलते हैं जिसको पता है, शाबाश इश्तराक होता है, दो कथा, जैसे मुआशरा, मुकाबला, मुनाजरा, मुबाहला, बहुत बड़ी बात है इसमें, यानी इसमें बाहम मिलजुल कर किसी काम को करने का मानी आता है। तो फिर आप क्या कहेंगे, वतवासो बिल हक में ये नहीं है कि दूसरों को हक की नसीहतें करते हैं, खुद भी हक पे जमते हैं, पहले खुद हक को मानेंगे फिर ही तो दूसरों को कहेंगे, खुद सब्र करेंगे तो दूसरों को कराएंगे। तो दो बातें, साउंड से वतवासो बिल हक के कई और एंगल थे, पसाब ही यूसून अभी ही तवासी से दो बातें लिख लीजिए, ये आपके मेरे अमल की हैं, इंतहाई एहतमाम के साथ, एहतमाम से प्रोफेशनली पूरे दिल जान के साथ दूसरों को अच्छी बातों की नसीहत करते हैं, तलकीन करते हैं, तकरार करते हैं, और दूसरी बात यह है कि खुद भी उस पर अमल करते हैं, और बेसब्र भी इसी में है, यानी हक की तलकीन भी करते हैं और सब्र की भी, वतवास बिल हक की। अब तवासी का लफ्ज थोड़ा सा आपको समझ आ गया, म्यूचुअल का मानी इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं, म्यूचुअलिटी पाई जाती है, ये नहीं कि कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा ना हो, बल्कि दूसरों के साथ आप मामला करें। लिमा तकुलून अमाला तफलून, सूरत सफ की पहली आयत है, तो क्या पता चला कि खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। यहां से अब सूरत के आखिर में सिर्फ दो लफ्ज हैं, ये है जी ईमान और अमल सालेह के बाद इज्तमाई नेकियां, और आज इसमें हम फेल हैं। मैं कोई दावा नहीं कर सकती, किसी एक पर्सन को नहीं कह सकती, इंडिविजुअली तो दुनिया में आज भी बड़े अच्छे अच्छे मुसलमान हैं, बट बीइंग अ नेशन हम में से 2 बिलियन मुसलमानों में मेजॉरिटी इस वक्त इसमें फेल है। हम अपनी जाहिरी इबादत के खौल में खोए में, हज के बाद उमरा, उमरे के बाद फिर उमरा, फिर रमजान का उमरा, फिर शाबान का उमरा, और ए बी सी डी सी, लेकिन वतवास बिल हक और वतवास बिस सब्र ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बातें सुननी पड़ती हैं। लिख के रख लीजिए कि तवासी बिल हक हो नहीं सकता जब तक तवासी बिस सब्र ना हो। एक बच्चे के हाथ से अपने छुरी छुड़वानी हो तो आसान है, सेलफोन छुड़वाना हो, सिगरेट पीने वाले के हाथ से सिगरेट छुड़वाना हो, मैच देखने वाले को आपके टीवी बंद कर दो, आसान काम है, बालों को पड़ेगा आपके। 100 नेकियां लोग कर लेते हैं, एक गुनाह नहीं छोड़ते। ये बहुत आसान है किसी को नेकियों की दावत देना। कल भी बताया था कि आप वजीफे बताएं, आप लोगों को चिल्ला कशी बताएं, देख पका के खाने की रगबत दें, लोग बड़े खुश होंगे। आप जहां एक उनकी बुराई पे बात करेंगे, यहां वो परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने यहां वतवास बिल हक में कुव्वत और शिद्दत के साथ कहा, पूरे जोश से। क्या पता चला कि तुम खुद नेक नहीं रह सकते जब तक तुम अपने प्यारों को नहीं दोगे। पूरे जोर शोर से, पूरी कुव्वत के साथ हक का ऐलान करो। आप अच्छा खाना खाते हैं, अपनों के बगैर खाया नहीं जाता, याद आते हैं, अच्छा खाए वो होते तो ये खाते ये करते, तो अल्लाह कहते हैं तुम अपने घर वालों से अपना दीन कैसे बचा लोगे। तुम्हें इतना सुकून मिलता है इसमें, तुम्हें इतनी खुशी मिलती है, तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है, अपने स्पाउस के बगैर ही दीन में चल पड़ोगे, अपने भाई बहनों को नहीं बुलाओगे। और अगर यहां वो मराहिल लिखें जो कल भी बताए थे कि आमनु क्या है, हक को माना, पहले बंदा खुद मानता है, रिकग्नाइज द ट्रुथ, फिर उसके बाद वो आमिलु सालेहात क्या है, अनाउंस द ट्रुथ, ऐलान कीजिए हाँ मैं मुसलमान हो गया हूं, लेकिन वतवास बिल हक क्या है, प्रोपिगेट द ट्रुथ, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफी व तनहौन अनिल मुनकर। तो हम लिए दिए नहीं रह सकते, हमारे दीन का जो पिलर है ना, या वो एक सर्कल जिसके इर्द गिर्द दीन घूमता है ना, वो तवासी बिल हक है। जरा सा हक को देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है, फिर तवासी तो आगे भी आ रहा है, कुछ डायमेंशन इसकी उधर देखेंगे। बस अभी इतनी बात लिख लीजिए कि ईमान लाकर अमल सालेह करने के बाद हम फर्द फर्द बनकर नहीं रह सकते, हमें कान नहुम बुनजानुम मरसूस बनना है। देखिए ना, आप 1000 ईंटे इकट्ठी कर दें तो ये कमरा बन जाएगा, ठेरी होगी, हवा चलेगी, हो सकता है 2-4 ईंटे गिर जाएं। एक ईंट के साथ दूसरी ईंट को इस तरह से आप बांध बांध के दीवार बनाते हैं ना, तवासी बिल हक बिखरी हुई ईंटों को दीवार में बदलना है। हमारा दीन इज्तमाईयत का दीन है, 5 वक्त की जमात की नमाज से बताती है, ईद की नमाज खुले मैदानों में करना बताता है, हज और उमरे के लिए इतने बड़ी जगहों पर जाकर जमा होना बताता है, एक ही वक्त पे रोजा खोलना और एक ही वक्त पे बंद करना इज्तमाईयत का। तो ये लिख लीजिए कि अफराद अकेले दीन पे नहीं रह सकते, हम मिल के रहेंगे, इससे फिर मोमिन और एक सालेह मुआशरा वजूद में आता है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना है, मुआशरे को बिगड़ने नहीं देना, और एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करनी है।